हेलो एवरीवन, ZDM। आज हम लोग पी ब्लॉक के ग्रुप 17 के बारे में पढ़ेंगे। मैंने ग्रुप 15 और 16 को प्रीवियस पॉडकास्ट में पहले ही कवर कर लिया है, आप वहाँ से उसे कवर कर सकते हैं। और तो आज हम लोग ग्रुप 17 पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप 17 जो कि हैलोजन फैमिली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है। इसमें पहली चीज़ तो कि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटालिक है, दे आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट्स एंड दे शो ग्रेट सिमिलैरिटी विच अदर। मतलब कि जो प्रॉपर्टीज़ है उसका वेरिएशन बहुत ही ग्रेजुअल है, बहुत ही रेगुलर है, ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं है। और सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, ये बात ध्यान रखें, सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। हाँ, एसिटीन और टेनिसिन दोनों रेडियो एक्टिव है, बाकी सब रेडियो एक्टिव तो नहीं है, लेकिन एसिटीन और टेनिसिन रेडियो एक्टिव है। अकरेंस फ्लोरिन हमें मिल जाता है किसमें, फ्लोराइड्स के फॉर्म में, CaF2 फ्लोरोस्पा, Na3AlF6 क्रायोलाइट और फ्लोरापेटाइट C3Ca3PO4 CF2। ये हमने फ्लोरापेटाइट को उसमें फॉस्फोरस के अकरेंस में भी इसे पढ़ा था, तो ये दोबारा है यहाँ पे। तो फ्लोरिन के सोर्सेस क्या क्या हो गए, फ्लोरस्पा, क्रायोलाइट, फ्लोरापेटाइट। साइड में एक रिएक्शन है जो कि दिखाता है कि फ्लोरापेटाइट कैसे हुआ। असल में जो पहले जो हाइड्रोक्सीपेटाइट रहता है जिसमें OH रहता है, वो हमारा मिलती होता है हमें टीथ के अंदर, वो मिलती होता है जो बचपन में होता है, उससे उसमें फ्लोराइड का उसमें चेंजेस आता है तो वो फ्लोरापेटाइट बन जाता है जो कि परमानेंट टीथ होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो फ्लोरापेटाइट कहाँ मिलता है, हमारे परमानेंट टीथ में। क्लोरीन इन सी वाटर एज NaCl KCl.MgCl2.6H2 कार्नलाइट। क्लोरीन हम लोग को सी वाटर से मिल जाता है NaCl के फॉर्म में, एक और सोर्स है उसका कार्नलाइट जो कि मैग्नीशियम का ओर है, उसमें हमें क्लोरीन मिल जाता है। सीवीड हैव आयोडीन, सीवीड में I2 एलिमेंटल फॉर्म में होता है, जबकि चैल सॉल्टपीटर NaNO3 हैज आयोडेट इम्प्योरिटी। सीवीड जो होते हैं पानी के अंदर उनमें I2 एलिमेंटल फॉर्म में होता है, लेकिन जो चैल सॉल्टपीटर है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, उसके अंदर सोडियम आयोडेट होता है, मतलब आयोडीन आयोडेट के फॉर्म में मिलता है वहाँ पे। ठीक है, साइज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडाई इन रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। हैलोजन का साइज अपने ग्रुप में सबसे छोटा होता है, हैलोजन का साइज अपने ग्रुप में सबसे छोटा होता है क्योंकि साइज घटता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। बट और नोबल गैसेस में हम लोग वैन डर वाल्स रेडियस देखते हैं, तो इसलिए नोबल गैसेस का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है, जबकि बाकी सब में अगर हम लोग कोवलेंट रेडियस देखेंगे तो हैलोजन का साइज अपने ग्रुप अपने पीरियड में सबसे छोटा होता है। ठीक है, द साइज इंक्रीज ऑन द ग्रुप, बिल्कुल शेल्स बढ़ने तो बढ़ेगा। आयनाइजेशन एन्थैल्पी वेरी हाई, क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते 7 इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन देना तो कतई नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ले ले और नॉक्टेट पूरा कर ले। तो आयनाइजेशन इज वेरी हाई एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक एक्टिव बढ़ता है, हालांकि मेटल नहीं बनता, सब नॉन मेटल्स ही है। द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। यहाँ पे एक एनोमली है कि जनरली फ्लोरीन का डाउन द ग्रुप ये घटता है, तो फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए था क्लोरीन से, लेकिन ऐसा नहीं है, फ्लोरीन का साइज छोटा है और उसमें 3 लोन पेयर्स है, तो काफ़ी सुपर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फ्लोरीन के छोटे साइज के कारण उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसमें उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी है, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, वो क्लोरीन से कम है। क्यों? क्योंकि रिपल्शन है उसके अंदर। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी रिपल्शन चल रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यहाँ पे फ्लोरीन कोई एक्सेप्शन नहीं है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फ्लोरीन क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड I2 इज अ सॉलिड। ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस के फॉर्म में, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में। फ्लोरीन इज अ येलो गैस, क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो गैस, ब्रोमीन इज रेड, रेडिश ब्राउन भी बोल सकते हैं, और आयोडीन इज वायलेट। ये कलर्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, फ्लोरीन येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेड ब्राउन और आयोडीन वायलेट। द कलर, अब ये NCERT की लाइन जो मैंने लिखा हुआ है ब्लैक में, वो असल में रीज़न समझाता है कि इनमें कलर क्यों आता है। तो कलर ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन invisible region, which results in excitation of outer electron to higher energy level, absorb different quanta of radiation. तो जब electrons energy accept करते हैं visible region के energy gap, energy range वाला, तो वो higher energy level में excite हो जाते हैं. जब उसमें excite हो जाता है electron, outer electron higher energy level पे चल जाता है, तो फिर सब अलग अलग radiation का amount accept करते हैं. हर element के लिए रेडिएशन जो उन्हें एक्सेप्ट करना होगा दूसरे वाले में जाने के लिए, हायर सबशेल में जाने के लिए, उसके लिए इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एनर्जी चाहिए. तो और हम पता है कि जो कंपाउंड जो कलर अब्जॉर्ब करता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखता है. जो कलर अब्जॉर्ब होता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है, वो कलर नहीं दिखता है. तो इन द सेम वे यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग कलर अब्जॉर्ब करेंगे, तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हमें दिखेगा. ठीक है, यही रीज़न है इसके अलग अलग कलर होने का. डेंसिटी फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन लेस देन ब्रोमीन लेस देन आयोडीन ऑब्वियस है कि फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑर्डर है एकदम. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मॉलिक्यूलर वेट के कारण आयोडीन सबसे ज़्यादा है. ये सॉल्युबिलिटी वाला रिएक्शन जो है इधर साइड में, ये काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है. ये डिफरेंस दिखाता है चारों हाइड्रोजन के सॉल्युबिलिटी में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फ्लोरीन प्लस वाटर, फ्लोरीन ही है जो वाटर को ऑक्सीडाइज कर पाता है, बाकी कोई भी वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता. ये फ्लोरीन है जो कि वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है. फ्लोरीन प्लस वाटर फॉर्म्स हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF प्लस O2. HF प्लस O2 बन गया यहाँ पे. ठीक है, सेकेंड रिएक्शन क्लोरीन प्लस H2O फॉर्म्स HCl प्लस HOCl. तो यहाँ पे एक डिस्टर्ब रिएक्शन एक तरह से बोल सकते हैं, हाँ डिस्टर्ब रिएक्शन हुआ है. ठीक है, क्लोरीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में टूट गया है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरिक एसिड दो एसिड हम लोग को यहाँ मिलता है. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड. ब्रोमीन प्लस वाटर HBr प्लस HOBr, HBr प्लस HOBr. आयोडीन प्लस वाटर कोई रिएक्शन नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन प्लस वाटर का कोई रिएक्शन नहीं होता. इनफैक्ट अगर हम फ्लोरीन वाले रिएक्शन को उल्टा लिख दें, मतलब कि HI प्लस O2 गिव्स I2 प्लस H2O. ध्यान से सुनना, HI प्लस O2, HI में अगर ऑक्सीजन डालेंगे तो आयोडीन और वाटर मिलेगा. ये रिएक्शन फिजिबल है, काफ़ी अच्छा फिजिबल है ये रिएक्शन, क्योंकि आयोडीन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो इसीलिए हम लोग आयोडीन का रिएक्शन को इसमें I2 प्लस H2O गिव्स नो रिएक्शन एट ऑल, इसका उल्टा रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा फिजिबल है. ठीक है, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर सॉल्यूबल इन वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स टू गिव कलर सॉल्यूशन. यही कलर सॉल्यूशन हमारे लेयर टेस्ट में काम आता है, जो कि आयोडाइड और ब्रोमाइड आयन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, सॉल्ट एनालिसिस में ही पढ़ाया जाता है. बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन लेस देन ब्रोमीन लेस देन आयोडीन, क्योंकि शेल का साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है अराउंड द ग्रुप. बॉन्ड स्ट्रेंथ में एक एनोमली है, एक एक्सेप्शन यहाँ आता है. बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या हो रहा है कि Cl2 Br2 फिर बीच में फ्लोरीन आगे से उठ के ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में चला गया. अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्लोरीन में काफ़ी ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन है. सो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, उसके अंदर 6 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर एक फ्लोरीन का, 3 लोन पेयर दूसरे फ्लोरीन का, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ही लोन पेयर रिपल्शन होने लग जाता है. तो इसीलिए पहले क्लोरीन आ जाता है, फिर ब्रोमीन आ जाता है, फिर फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन बीच में चल जाता है उठ के. ठीक है, तो ये वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट. अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप का -1, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इस ग्रुप के दिखाते हैं -1. हाँ, फ्लोरीन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, वो +1 +3 +5 और +7 भी दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल है तो वो एक्सपैंड कर सकते हैं अपना ऑक्टेट. तो +1 +3 +5 +7. और हाँ, ये भी बात है कि फ्लोरीन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनफैक्ट, तो वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखा ही नहीं सकता है. ठीक है, लेकिन जब तक कि ज़बरदस्ती ना पूछे कि फ्लोरीन पॉजिटिव दिखाता है या नहीं, तब तक यही मानना है कि फ्लोरीन पॉजिटिव नहीं दिखाता है। एक्चुअली कंपाउंड एग्जिस्ट करता है जहाँ पर फ्लोरीन प्लस वन में है, क्योंकि ये HOF, ठीक है, HOF एक कंपाउंड है जहाँ पर फ्लोरीन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है जब तक स्पेसिफिकली HOF ऑप्शन में देख के HOF के बारे में पूछा नहीं जाएगा। हम यही मानेंगे कि फ्लोरीन सिर्फ माइनस वन दिखाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो IIT में पहले आया हुआ है, विच डज नॉट हैव मोर देन वन ऑक्सीजन, मतलब किसमें एक से ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट दिखाने की कैपेसिटी नहीं है। तो ऑप्शंस में से आंसर था सोडियम और फ्लोरीन, तो उसी को रेफरेंस मानते हुए हम यही मानेंगे कि फ्लोरीन सिर्फ एक ही दिखाता है अनलेस एंड अनटिल वो पूछा जाए, ठीक है। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन, अ हैलोजन ऑक्सीडाइजेस हैलाइड आयंस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, मतलब जो ग्रुप है उसमें जो ऊपर वाला हैलोजन है वो नीचे वाले हैलोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों को कर सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है, ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, ऐसे करके अपने नीचे वाले को कर सकता है ऑक्सीडाइज। रिएक्शन नीचे दिया हुआ है, F2+2X- F2F- +X2, इसमें X है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सिमिलरली क्लोरीन वाले केस में X है ब्रोमीन और आयोडीन, और ब्रोमीन वाले केस में X है सिर्फ आयोडीन, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर, फ्लोराइड लेस देन क्लोराइड लेस देन ब्रोमाइड लेस देन आयोडाइड, तो ये रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह केमिस्ट्री में काम में आता है कि आयोडाइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस ग्रुप, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। फ्लोराइड इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन क्लोराइड एज बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड इज लेस एंड हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड आयन इज मोर, इवन दो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑफ माइनस इज मोर। देखो तो बात यहाँ पे ये है कि हमने ऊपर पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, तो सवाल बनता है कि जब ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर देखेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर किससे ज़्यादा होगा, एफ माइनस का या सी एल माइनस का। तो यहाँ पे एफ माइनस का ही ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर में तीन चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, एक तो बॉन्ड टूटना चाहिए आपको एफ टू एफ और एफ में टूटना चाहिए तो बॉन्ड एसोसिएशन एन्थैल्पी, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस चार्ज एफ माइनस बनाना चाहिए, और अगला स्टेप होता है उसका हाइड्रेशन, क्योंकि वो वाटर एक्वस मीडियम में होता है बेसिकली। तो भले ही क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ज़्यादा हो फ्लोरीन से, वहाँ पे क्लोरीन डोमिनेट करता है, लेकिन जो बाकी दो फैक्टर्स है बॉन्ड एसोसिएशन एन्थैल्पी, हमें पता है फ्लोरीन का बॉन्ड वीक है तो वो जल्दी टूटेगा, तो बॉन्ड एसोसिएशन एन्थैल्पी फ्लोरीन का कम होता है, तो वहाँ पे फ्लोरीन को फेवर मिल गया। अगला स्टेप हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन चार्ज अपॉन साइज, ठीक है, चार्ज दोनों पे सेम है माइनस वन, फ्लोरीन का साइज छोटा है तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी फ्लोरीन का ज़्यादा, तो दो फैक्टर फ्लोरीन के सपोर्ट में है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि फ्लोरीन इज़ अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, ठीक है, ये बात याद रखने का है। फिर से भी सॉल्युबिलिटी वाला रिएक्शन है, और एक रिएक्शन जो लास्ट में मैंने बोल रहा था ये रहा, HI+O2 गिव्स I2+H2 जस्ट ऑपोजिट ऑफ फ्लोरीन, जो रिएक्शन फ्लोरीन के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वही रिएक्शन आयोडीन के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। अब सेकेंड पीरियड वाले सारे एलिमेंट्स की ये नाटक है कि कुछ ना कुछ एनॉमली शो करेंगे वो, तो वो क्या क्या है देख लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ई नॉट मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एसोसिएशन एन्थैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी आर लेस देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। रेडाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एसोसिएशन एन्थैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी एक्सपेक्टेड से कम है। ये सिर्फ एक ही ऑक्सीसिड बनाता है HOF, ठीक है, जो ऊपर डिस्कस किया था इसमें फ्लोरीन प्लस वन में होता है। HF एसिड है, ऑक्सी एसिड नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है तो ऑक्सी एसिड कैसे होगा। HF एक और एसिड है, ठीक है। HF इज ए लिक्विड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग, HF में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग देखने को मिलता है, जिस कारण वो लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसकी अफिनिटी डाउन द ग्रुप घटते जाती है। अफिनिटी वाला पॉइंट जो एक्टिविटी विद हाइड्रोजन में था, सॉरी। हाँ तो फ्लोरीन का हम लोग जहाँ तक बिहेवियर का बात करते हैं, तो HF एक लिक्विड है क्योंकि उसके अंदर स्ट्रांगली एच बॉन्डिंग शो होता है, ठीक है, फ्लोरीन का एच बॉन्डिंग टेंडेंसी अच्छा खासा है तो शो होता है वहाँ पर। द एक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए जो एफिनिटी है डाउन द ग्रुप घटते जाता है, मतलब फ्लोरीन हाइड्रोजन को ज़्यादा चाहता है, आयोडीन हाइड्रोजन को कम चाहता है, ठीक है। एफिनिटी मतलब कितना चाह रहा है उसको। तो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, अब देखो फ्लोरीन एच के साथ रहना चाहता है तो एच को जाने नहीं देगा, एच को जाने नहीं देगा वो, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। और एच आई जैसे, एच आई क्या करेगा, वो हाइड्रोजन के साथ रहना नहीं चाहता, ज़बरदस्ती मान लो कोई बॉन्ड बना दिया तो जैसे ही मौका मिलेगा वो अपना एच दे देगा कि जाओ ले जाओ। तो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है एच आई का और सबसे कम है एच एफ का। इसका उल्टा एकदम ऑर्डर है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, ऑफिस दिख रहा है कि एच एफ ग्रेटर देन एच बी आर ग्रेटर देन एच आई, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया का जैसे याद है, अमोनिया में भी एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन था, वैसे यहाँ पे भी है। मेल्टिंग पॉइंट में एच एफ एच आई के जस्ट पीछे रह जाता है, ठीक है, एच एफ एच आई के जस्ट पीछे रह जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट में एच एफ एच आई के आगे आ जाता है, एच बॉन्डिंग के कारण, दोनों एच बॉन्डिंग के कारण ही हो रहा है। मैंने साइड में अमोनिया पर ऑर्डर भी लिख दिया ताकि एक रेफरेंस के तौर पर याद रहे कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। देखो मेल्टिंग पॉइंट में एच एफ एक्सेप्शन में एक्सेप्शन है और बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया एक्सेप्शन में एक्सेप्शन है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एच एफ का सेकेंड हाइएस्ट, बॉइलिंग पॉइंट एच एफ का हाइएस्ट, मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का हाइएस्ट, बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का सेकेंड हाइएस्ट, ठीक है। ये दोनों एक्सेप्शन ध्यान रखना, वाटर वाले ग्रुप में मतलब ग्रुप 16 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, वाटर दोनों में सबसे आगे है, बस इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से स्टडी करना है, इसको याद भी रखना है ये दोनों का कंपैरिजन करके। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, फ्लोरीन फॉर्म्स OF2 एंड O2F2, दो फ्लोराइड्स बनता है। ओनली OF2 स्टेबल है 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर पे सिर्फ OF2 ही स्टेबल होता है, O2F2 टूट जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान देने का कि O2F2 में परऑक्साइड लिंकेज नहीं है, H2O2 में परऑक्साइड लिंकेज है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का चार्ज -1 -1 है, यहाँ ऑक्सीजन का चार्ज +1 +1 है, ठीक है। दे आर एसेंशियली ऑक्सीजन फ्लोराइड्स, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयन की तरह बिहेव कर रहा है, कटायन की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि फ्लोरीन अनायन की तरह बिहेव कर रहा है। दे आर ऑक्सीजन फ्लोराइड्स एंड दे आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, देखिए फ्लोरीन वेरी इजिली, दे आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, जैसे कि यहाँ पे प्लूटोनियम में एग्जांपल जो यहाँ पे यूज होता है, प्लूटोनियम में अगर O2F2 डालेंगे तो PuF6 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल के क्लीनिंग में काम आता है। प्लूटोनियम में अगर O2F2 डालेंगे तो PuF6 बन जाएगा, PuF6 को हम लोग निकाल लेंगे अलग से, ठीक है। प्लूटोनियम इस तरह से हमें स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल से प्लूटोनियम अलग हो गया, ठीक है। तो ये था रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ये भी एक एनोमली है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मिडिल रो एनोमली इसका नाम है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, इसका याद करने का ऑर्डर है, आई कल बाहर, आई कल बाहर, कौन है पता नहीं, आई कल बाहर, तो इसको बोलते हैं मिडिल रो एनोमली। उसमें रीज़न यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि आयोडीन सबसे आगे है क्योंकि इसका बॉन्ड का पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ग्रेटर पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड, साइज बड़ा है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, ठीक। क्लोरीन का स्मॉल साइज है तो पाई बॉन्डिंग टेंडेंसी ज़्यादा है तो ऑक्साइड्स अच्छा बनेगा, ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और ब्रोमीन सबसे पीछे, दोनों ही नहीं है इसके पास, दोनों में इंटरमीडिएट फीचर्स है ना, उतना मतलब थोड़ा सा बड़ा है तो पाई बॉन्ड उतना अच्छा बन नहीं पाता, और आयोडीन से छोटा है तो पोलराइजेशन उतना अच्छा है नहीं, तो इसलिए ब्रोमीन सबसे लास्ट में चला गया। स्टेबिलिटी ऑक्साइड्स, आई कल बाहर, उसको बोलते हैं मिडिल रो एनोमली, जहाँ पे मिडिल रो वाला एनोमली एनोमलस बिहेवियर शो करता है और पीछे चल जाता है, ग्रेजुअल कैरेक्टर ग्रेजुअल डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन्स आर मोर स्टेबल देन लोअर, हायर ऑक्साइड्स जैसे कि Cl2O7, Cl2O3, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं, Cl2O तक बनता है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जो हायर ऑक्साइड्स जहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, वो हैलाइड ज़्यादा स्टेबल होंगे उन हैलाइड से जहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, क्यों, मोर बॉन्ड्स इम्प्लाइज बेटर स्टेबिलिटी, तो इसीलिए जहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। Cl2O2 यूज़ होता है ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर, ठीक है, याद रखना Cl2O2, कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि Cl2O भी हो जाता है, ठीक है। तो Cl2O2 यूज़ होता है ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में, जहाँ दो ऑक्सीजन है वो ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है। Cl2O2 एक ब्लीचिंग एजेंट है। ब्रोमीन ऑक्साइड्स एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर एंड आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्रोमीन के ऑक्साइड्स देखा है कि अनस्टेबल है, इसलिए बहुत ही लो टेम्परेचर्स पे एग्जिस्ट करता है एंड देर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्योंकि जल्दी से टूट जाता है वो लोग, जल्दी से टूटना चाहता है तो वो जल्दी से अपना ऑक्सीजन दे देता है। तो ब्रोमीन ऑक्साइड्स एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर एंड आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स, I25 इज यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ CO। तो पहला बात, आयोडीन के ऑक्साइड्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और I25 का यूज़ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में। I25 यूज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में। रिएक्शन नीचे दिया हुआ है, I25 को कार्बन मोनोऑक्साइड में डालेंगे तो आयोडीन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। वही आयोडीन को स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन या थायोसल्फेट सॉल्यूशन जो बोलते हैं उससे टाइट्रेट करवा देंगे तो आयोडीन मिलेगा, और उससे फिर हम लोग आयोडोमेट्रिक एनालिसिस से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन साइड में दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी कंसेप्चुअल है, इसको ध्यान से एकदम एनालाइज करना है। स्ट्रक्चर दिए हुए हैं चार, OCl2, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ठीक है। इसमें अलग अलग बॉन्ड लेंथ को ऑर्डर को अरेंज करने बोला गया है। तो देखो OCl2 के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड है, वो कोई रेजोनेंस नहीं कुछ नहीं, वो प्योर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो उसका लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। इसके बाद जो ClO2 वाला बॉन्ड है, ClO2 वाला बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड तो दिख रहा है लेकिन उसमें गड़बड़ है, उसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन है ऊपर, अगर दिख रहा होता है एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन के कारण जो बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन होने के कारण बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है, ठीक है। देखो नीचे ऑर्डर देखो। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले वाले पे, ए, जो ए वाला बॉन्ड है वो भी डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस अंडरगो कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद है सी अपना, जो एक और डबल बॉन्ड है जो वो भी रेजोनेंस अंडरगो कर रहा है, ठीक है। तब ई प्योर सिंगल बॉन्ड और सी एल के बीच में, फिर बी सी एल ओ के बीच में, हाई बॉन्ड पर ऑक्सीलिंग के छोटा होगा तो छोटा हो गया। डी में बॉन्ड ऑर्डर से यूज़ करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 नहीं है, 1.75 होता है, जब ऑड इलेक्ट्रॉन होता है तो 0.25 हम लोग हटा देते हैं बॉन्ड ऑर्डर में से, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन होता है तो 0.25 हटा देते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.75। ए और सी में, ए में आइडेंटिकल आर ज़्यादा है, ज़्यादा रेजोनेंस होगा, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आ जाएगा। और सी इज़ प्योर डबल बॉन्ड, सी इज़ प्योर डबल बॉन्ड, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। ये और सी दोनों ही डबल बॉन्ड, एक तरह से वो दोनों का कंपेयर करना टफ है। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल्स, आयनिक कैरेक्टर किससे ज़्यादा होता है, फ्लोराइड्स का ऑब्वियसली, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा आयनिक होगा बॉन्ड, तो MF ग्रेटर देन MCl, MBr ग्रेटर देन MI, ठीक है। फ्लोराइड्स का रिएक्टिविटी, आयनिक कैरेक्टर फ्लोराइड्स का ज़्यादा होता है कंपेयर टू ब्रोमाइड्स, क्लोराइड्स, आयोडाइड्स, ओके। कोवेलेंट कैरेक्टर का यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल दिए हैं। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन दिख रहा है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले वाले में +4 और +2 है, जिसका +4 है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। फिर लेड +4 वाले का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। फिर एंटीमनी, उसमें भी +5 वाले का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। फिर यूरेनियम, यूरेनियम में भी +6 वाले का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ये बात क्लियर है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन वॉज डिस्कवर्ड बाई शील बाई द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2, और यही प्रोसेस हम आज तक यूज़ करते हैं क्लोरीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, HCl को MnO2 पर डाल के, ठीक है। डेवी जो थे उन्होंने क्लोरीन नाम दिया था उसे कलर के कारण, ग्रीनिश येलो कलर देख के, ठीक। प्रिपरेशन इसका क्लोरीन का, MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। तो जो शील का प्रोसेस था वही एग्जैक्टली सेम प्रोसेस, MnO2 में HCl डाल दिया, तो क्या क्या मिला प्रोडक्ट्स, MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर, MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर। क्लोरीन भी मिला जो चाहिए था, मैंगनीज क्लोराइड मिला, आप ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूस हो गया मैंगनीज, ऑक्लोरीन हो गया ऑक्सीडाइज। ठीक है, अगला रिएक्शन ये पहले वाले की तरह ही है, सेम टू सेम है लगभग, लेकिन ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, इसमें यील्ड ज़्यादा है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन NaCl प्लस MnO2 प्लस H2SO4, देखो बहुत सिमिलैरिटी है, NaCl प्लस MnO2 प्लस H2SO4 गिव्स MnCl2 प्लस NaHSO4 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। यहाँ पे प्रोडक्ट्स लगभग सेम है, MnCl2 यहाँ भी बन रहा है, क्लोरीन यहाँ भी बन रहा है, वाटर यहाँ भी बन रहा है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये ज़्यादा प्रेफर्ड रिएक्शन है। प्रोडक्ट्स क्या क्या बनता है वो फिर से बोलते हैं, मैंगनीज क्लोराइड, क्लोरीन, वाटर। अगर NaCl यूज़ करेंगे H2SO4 के साथ तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बनेगा। ठीक है, एक और प्रोसेस है लगभग सेम, वही है कि HCl को ऑक्सीडाइज करवा दो, तो KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट डालेंगे HCl में, तो फिर से प्रोडक्ट्स काफ़ी सिमिलर है, मैंगनीज क्लोराइड, क्लोरीन, वाटर, यहाँ पे क्यों K था तो वो एनायन ले लिया, KCl बन गया, तो KCl प्लस MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। चौथा प्रोसेस है डीकन प्रोसेस। ठीक है, इसका कैटलिटिक रिएक्शन है, इसको कैटलिस्ट भी याद रखना पड़ेगा। HCl प्लस O2 जब CuCl2 के प्रेजेंस में करवाते हैं, CuCl2 के प्रेजेंस में करवाते हैं 723 केल्विन पे, तो क्लोरीन और वाटर मिलता है। HCl को ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करवाते हैं CuCl2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 723 केल्विन पे, तो क्या मिलता है, क्लोरीन और वाटर। HCl प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एट 723 केल्विन गिव्स H2O प्लस क्लोरीन। ठीक है, और पांचवा प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। बहुत ही ऑब्वियस प्रोसेस है कि तुम लोग ब्राइन को कॉन्सेंट्रेटेड NaCl को इलेक्ट्रोलाइज करवा लो तो ये मिल जाएगा, हमें क्लोरीन मिल जाएगा, इसे डाउ प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, इट्स अ ग्रीनिश येलो गैस, पंजेंट, सफोकेटिंग, जानते हैं सब कोई क्लोरीन एक ग्रीनिश येलो गैस है, उसका स्मेल काफ़ी पंजेंट एंड सफोकेटिंग टाइप का होता है। इट लिक्विफाइज टू ग्रीनिश येलो लिक्विड, ये अच्छा पॉइंट है, क्लोरीन को जब लिक्विफाई करते हैं तब भी अपना कलर चेंज नहीं करता, वो ग्रीनिश येलो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात याद दिलाते हैं ओजोन, ठीक है, ओजोन का कलर कैसा था, पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड, वॉयलेट ब्लैक सॉलिड, याद है वेरिएशन, लाइट ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड और वॉयलेट ब्लैक सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे अब क्लोरीन का कुछ रिएक्शंस दिया हुआ है, P4 प्लस Cl2 PCl3, ठीक, फ्लोरीन प्लस आयरन प्लस Cl2 FeCl3, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो अगला वाला है, S8 प्लस Cl2 डालेंगे तो H2Cl2 बना, सल्फर मोनोहैलाइड का डाइमर, ये बढ़ा था सल्फर में, सल्फर मोनोहैलाइड का डाइमर, तो ये याद रखने की बात है कि यहाँ पे क्या बनता है H2Cl2, सल्फर में जब क्लोरीन डालेंगे तो क्या बनेगा H2Cl2, सल्फर मोनोहैलाइड का डाइमर। ओके, और जब फिर फॉस्फोरस में क्लोरीन डालेंगे अलग प्रोपोर्शन में तो PCl5 भी बन सकता है अपनी नीड के अनुसार। H2S में क्लोरीन डालेंगे तो HCl प्लस S सल्फर, डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है, देख लो H2S में क्लोरीन डाला HCl प्लस सल्फर मिल गया। C10H16 हाइड्रोकार्बन में अगर Cl2 डालेंगे तो टूट जा रहा है 16HCl प्लस 10 कार्बन, ठीक है, C10HCl प्लस 10 कार्बन। नॉन मेटल प्लस बेस डिस्टॉप करके लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल एंड हाइपो फॉर्म ऑफ ऑक्सीएसिड बनाता है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, ये याद रखना होगा, मतलब कि ये इन जनरल बहुत जगह से अप्लाई होता है कि नॉन मेटल में अगर बेस डालेंगे, एक नॉन मेटल में अगर बेस डालते हैं तो दो प्रोडक्ट बनता है, एक तो मेटल का जो नॉन मेटल का जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अटेन हो जाता है एक प्रोडक्ट में, ठीक है, दूसरे प्रोडक्ट में हाइपो फॉर्म ऑफ असऑक्सीएसिड, मतलब असऑक्सीएसिड बनाओ उसका एक ऑक्सीजन हटा दो, हाइपो मतलब एक ऑक्सीजन हटा देना, तो पहले असऑक्सीएसिड बनाओ फिर एक ऑक्सीजन हटा दो। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, जैसे कि P4 प्लस NaOH, तो एक तो PH3 बन गया, जब फॉस्फोरस -3 में जो कि उसका लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, वहाँ आ गया, और NaH2PO2, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड। तो यहाँ पे असोक्सी एसिड बना इसका H3PO2। सो सॉल्ट है यहाँ पे, अलग बात है NaCl है, यहाँ पे सॉल्ट बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली बेस से एक ना एक कटायन तो आएगा ही, सॉल्ट बनेगा। तो हम लोग एक बार एसिड पे फोकस करते हैं। तो ऑक्सी एसिड क्या होता, H3PO2 होता फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, उस H3PO3 होता है, H3PO3 होता फॉस्फोरस एसिड, उसमें से एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो क्या मिलेगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड होता है H3PO3, उसमें से अगर एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो बनेगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हुआ। अलग एग्जांपल हुआ क्लोरीन प्लस NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट। यहाँ गौर करने के बाद है कोल्ड एंड डाइल्यूट और हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड पर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनता है। तो क्लोरीन प्लस NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट में NaCl प्लस NaOCl, NaCl प्लस NaOCl, ठीक है, NaCl OCl, यहाँ पे अगला वाला देखते हैं समझ में आएगा। जबकि अगले वाले में Cl2 प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस NaCl3। क्या देखने का तरीका, कूल डाइल्यूट में ऑक्सीजन कम है, ज़्यादा विगरस रिएक्शन नहीं हुआ तो NaOCl बना, और हॉट एंड कंसेंट्रेटेड में विगरस रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन ज़्यादा बना तो NaCl प्लस NaCl3 हो गया इसमें हॉट एंड कंसेंट्रेटेड में। और कोल्ड डाइल्यूट में क्या होगा, कोल्ड डाइल्यूट में क्या होगा, NaCl प्लस NaOCl, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, NaCl प्लस NaOCl मतलब कोल्ड डाइल्यूट, और NaCl प्लस NaClO3 मीन्स हॉट एंड कंसेंट्रेटेड, हाँ NaClO3, OCl3 मत करना, बहुत कॉमन मिस्टेक है, NaClO3, ठीक है। विद ड्राई स्लेक लाइम क्लोरीन रिएक्ट्स, ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। जब हम लोग ड्राई स्लेक लाइम में क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन डाले तो CaOCl2 बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया और वाटर बन गया। अब ये जो तुम्हारा पूरा रिएक्शन है, जब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछे तुमसे ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, एक काम करो पूरा रिएक्शन लिख दो डॉट डॉट करके, देखो नीचे प्रोडक्ट ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, CaOCl2, CaCl2, .2H2O, .CaOH2, मतलब क्लोरीन को छोड़ के पूरा रिएक्शन लिख दो इसमें, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaOCl2, .CaCl2, .CaOH2, .2H2O, ठीक है, ये अपना ब्लीचिंग पाउडर। मीथेन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, ठीक है, ये क्लोरीनेशन है मीथेन का, मीथेन प्लस क्लोरीन यूवी रेडिएशन CH3Cl प्लस HCl, ओके, CH3Cl प्लस HCl, एंड एल्कीन में जो क्लोरीन डालेंगे ऑलमोस्ट कलरलेस होता है क्लोरीन सॉल्यूशन, पानी के अंदर ही ग्रीनिश येलो टिंज रहता है बस, रूम टेम्परेचर पे जब डालेंगे तो वो अनसैचुरेशन उसका हट जाएगा, CH2Cl बन जाएगा, तो वो भी कलरलेस ही बनता है लगभग। तो इसीलिए हम लोग जब अनसैचुरेशन ऑफ एल्कीन डिटेक्ट करना होता है तो हम लोग ब्रोमीन टेस्ट करते हैं, क्लोरीन टेस्ट नहीं करते, पता है इसीलिए कि ब्रोमीन टेस्ट क्यों करते हैं, ब्रोमीन वाटर से टेस्ट करते हैं, क्योंकि ब्रोमीन पहले रेडिश ब्राउन होता है और फिर कलरलेस होता है, एक क्लियर चेंज है, चेंज इज विजिबल, लेकिन क्लोरीन में वो चेंज उतना विजिबल नहीं होता, इसके कारण हम लोग क्लोरीन को यूज़ नहीं करते, ब्रोमीन को यूज़ करते हैं। क्लोरीन प्लस वाटर गिव्स HOCl प्लस HCl, क्लोरीन ऊपर वाला ऊपर हमने पहले ही रिएक्शन पढ़ा था, ये क्लोरीन को वाटर में डिसॉल्व करते तो कैसे बनता है, तो येलो कलर का क्लोरीन मॉइस्चर के प्रेजेंस में कलरलेस हो जाता है, HOCl प्लस HCl इज कलरलेस थिंग, ठीक है। HOCl टूट के नेसेंट ऑक्सीजन देता है, क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन, वो नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी कलर सब्सटेंस को कलरलेस में बदल देता है, ठीक है, वो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, किसी भी कलर सब्सटेंस को कलरलेस में बदल देता है। इफ कलर सब्सटेंस गिवन ओनली देन O2 इवॉल्व्स, अगर कलर सब्सटेंस नहीं होगा तो O2 इवॉल्व नहीं होगा, HOCl जैसा है HOCl की तरह ही रहेगा, कलर सब्सटेंस है तो वो नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करके तो कलरलेस करेगा और O2 गैस इवॉल्व होगा, ओके। हाँ, यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि क्लोरीन के साथ क्या इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग के लिए, तो उसका आंसर है मॉइस्चर, क्योंकि क्लोरीन प्लस मॉइस्चर से ही रिएक्शन शुरू हुआ तो इसलिए मॉइस्चर इंपॉर्टेंट है। Bleaching action of chlorine is permanent because chlorine acts as an oxidizing agent. Bleaching action of SO2 is temporary as it acts as reducing agent and oxygen can be regained from surrounding. देखो तो हमने सल्फर डाइऑक्साइड में पढ़ा था कि सल्फर डाइऑक्साइड भी ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, यहाँ पढ़ते हैं कि क्लोरीन भी काम कर सकता है। अब क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो परमानेंट होता है क्योंकि वो ऑक्सीडेशन से होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग एक्शन टेम्प्ररी होता है क्योंकि वो रिडक्शन से हुआ। अब किसी से तुम रिड्यूस कर दिए और उसका कलर उड़ गया तो थोड़ी देर में वो एटमॉस्फेयर अपने आसपास से ऑक्सीजन ले लेगा और वापस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वापस कलर आ जाएगा। लेकिन क्लोरीन वाले केस में ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि हमने ऑक्सीडाइज करके ही उसका कलर उड़ाया है, तो ऑक्सीजन और तो ले नहीं सकता था आसपास से, ठीक है। तो सिर्फ क्लोरीन का ब्लीचिंग को परमानेंट मानते हैं और SO2 का ब्लीचिंग को टेम्प्रेरी मानते हैं, ओके। और भी कुछ रिएक्शन है क्लोरीन का, Fe+2 क्लोरीन जहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। Fe+2, Fe+3+HCl सल्फाइड को सल्फेट बना दिया, SO2 को सल्फेट बना दिया। एक और रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है, Iodine+Chlorine+Water, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Iodine+Chlorine+Water जब तीनों को एक साथ डालेंगे तो HIO3 आयोडिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, आयोडिक एसिड, HIO3 इज आयोडिक एसिड प्लस HCl बनता है। आयोडीन क्लोरीन और वाटर को मिला के जब बनाते हैं तो आयोडिक एसिड प्लस HCl बनता है। आयोडिक एसिड क्या होता है, HIO3। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आयोडिक एसिड क्या होता है, HIO4। पैराडिक एसिड क्या होता है, HIO4। यहाँ पे दो रिएक्शन जो कि और भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रास्ट है, SO2+Cl2 चारकोल के प्रेजेंस में SO2Cl2 बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन चारकोल के प्रेजेंस में सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2 और Cl2 चारकोल के प्रेजेंस में एक टंग ट्विस्टर बनाते हैं, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। और SO2 और Cl2 वाटर के प्रेजेंस में अच्छे अच्छे रिएजेंट्स की तरह प्यार से H2SO4 और HCl बना देते हैं, जहाँ पे SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो SO2+Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फ्रॉम H2SO4+HCl, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चारकोल रहेगा तभी सल्फ्यूराइल क्लोराइड, वरना H2SO4+HCl। यूजेस क्लोरीन का, अभी हमने पढ़ा ब्लीचिंग में यूज़ होता है, तो ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग वुड पल्प कॉटन एंड टेक्सटाइल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम, मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथाइल पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT का फुल फॉर्म एंड रेफ्रिजरेंट्स, स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये चार काम इसका हम लोग देख चुके हैं। कुछ पॉइजनस गैसेस बनाने के काम में आता है ये, जो इसका यूज़ तो नहीं है लेकिन ठीक है। प्रिपेयर पॉइजनस गैसेस, फॉस्जीन जैसे हुआ COCl2, बगल में लिखा हुआ स्ट्रक्चर भी है तीनों का, फॉस्जीन COCl2, उसके अंदर 8 लोन पेयर होता है मिला जुला के। मस्टर्ड गैस CL CH2 CH2, सल्फर CH2 CH2 Cl, सिमेट्री एक CL CH2 CH2 सल्फर CH2 CH2 सल्फर, क्लोरीन बीच में सल्फर दोनों साइड CH2 CH2 Cl, ठीक है, बीच में सल्फर दोनों साइड CH2 CH2 Cl। ये क्या है, मस्टर्ड गैस है, इसको वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया था, ठीक है, ये मस्टर्ड गैस। तीसरा गैस CCl3NO2, टीयर गैस इसको बोलते हैं, CCl3NO2, ये टीयर गैस, इसके अंदर होता है 14 लोन पेयर। तो फिर से पढ़ेंगे, फॉस्जीन क्या होता है, COCl2, मस्टर्ड गैस सल्फर CH2 CH2 Cl दोनों साइड में, CH2 CH2 Cl दोनों साइड में, ओके। और फिर उसके बाद आता है टीयर गैस, टीयर गैस क्या है, CCl3NO2, ओके। तो यहाँ हम लोग का क्लोरीन ख़त्म होता है। चलिए आते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड पे, ठीक है, HCl, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, NaCl प्लस H2SO4 को हम लोग 420 केल्विन पर अगर रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl बनेगा। वही सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट फर्दर रिएक्ट करके NaCl के साथ सोडियम सल्फेट बना देगा और फिर HCl निकलेगा, ठीक है, 823 केल्विन पे। तो पहले लोअर टेम्परेचर पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और हायर टेम्परेचर पे सोडियम सल्फेट बनता है, ओके। इसे पहले बार इसी प्रोसेस में ग्लोबर ने प्रिपेयर किया था, यही सेम प्रोसेस से ग्लोबर ने प्रिपेयर किया था इसे पहली बार, और डेवी ने बताया कि ये कंपाउंड है, ग्लोबर को लगा था कि ये एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो HCl निकल रहा है सोडियम सल्फेट के साथ या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, उसे ड्राई करने के लिए हम लोग उसे कॉन्ग H2SO4 के साथ पास करते हैं। क्यों? क्योंकि H2SO4 भी एसिडिक नेचर का है और एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और HCl भी अपने एसिडिक नेचर का है तो दोनों रिएक्ट नहीं करेगा। अगर हम लोग कोई बेसिक डेसिकेटर जैसे CaCl2 यूज़ करते तो शायद वो रिएक्ट कर जाता, तो इसीलिए हम लोग रिस्क नहीं लेने के लिए कॉन्ग H2SO4 यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, इट इस कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस, कलरलेस होता है, स्मेल अच्छी नहीं होती बिल्कुल भी, पंजेंट बहुत गंदी स्मेल, ईजिली लिक्विफाइड टू कलरलेस लिक्विड। क्यों इसका ईजिली लिक्विफाई क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, ये काफ़ी ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल है, क्लोरीन बहुत ज़्यादा लोन पेयर अपनी तरफ खींच लेता है, बहुत ज़्यादा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेता है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा पोलर है, और पोल्स डेवलप होने के कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड रहता है, तो इसीलिए उसको लिक्विफाई करना आसान होता है, ठीक है। इट फ्रीजेस टू फॉर्म अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एक अच्छा पॉइंट है कि HCl सॉलिड फॉर्म में कैसा दिखता है। HCl जब सॉलिड फॉर्म में आएगा तो वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट विल फॉर्म अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या बनाएगा HCl, लिक्विफाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब एक्वा रिजा का प्रिपरेशन में देखते हैं, एक्वा रिजा क्या है, इसमें 3 parts कॉन्ग HCl प्लस 1 part कॉन्ग HNO3, 3 parts ऑफ कॉन्ग HCl और 1 part कॉन्ग HNO3 मिलाएंगे तो मिलेगा क्या, एक्वा रिजा। एक्वा रिजा क्या करता है, वो क्लोराइड आयन को फर्निश करता है, नेसेंट क्लोरीन फर्निश करता है एक्चुअली, ठीक है। तो नेसेंट क्लोरीन जो फर्निश करता है वो बहुत ही नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम तक को रिएक्ट कर जाता है, ये नेसेंट क्लोरीन काफ़ी 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 ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए बगल में रिएक्शन दिया हुआ है। गोल्ड में अगर ये एक्वा रिजा मिक्सचर डालेंगे तो क्लोरीन निकल रहा है दिखा हुआ है, तो AuCl4 प्लस NO प्लस H2O बनता है, प्लैटिनम है PtCl6 टू माइनस प्लस NO प्लस H2O बन जाता है, ठीक है। नीचे कुछ अलायंस में एसिड का इफेक्ट दिखा हुआ है, किसी भी कार्बोनेट में अगर HCl डालेंगे तो CO2 निकलेगा, सल्फाइड में HCl डालेंगे तो SO2 निकलेगा, और हाइड्रोजन सल्फाइड में डालेंगे तो भी SO2 ही निकलेगा, ठीक है। अगले पेज पे आते हैं, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, डीकन प्रोसेस हमने देखा था, HCl प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एट 723 केल्विन गिव्स H2O प्लस Cl2, डीकन प्रोसेस याद आया, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ Cl2 अमोनियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज फ्रॉम कॉर्न स्टार्च, ठीक है। यूज इन एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक इन मेडिसिन एंड एज अ लैब रिएजेंट, बस पढ़ने का। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, इंटेक्स क्वेश्चन में था NCERT के, आयरन में HCl डालते हैं तो FeCl2 बनता है, FeCl3 नहीं बनता है, ऐसा क्यों होता है? आयरन में HCl डालेंगे तो FeCl2 बनता है, FeCl3 नहीं बनता, ऐसा क्यों? NCERT कहता है, NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन के आंसर में लिखा हुआ है कि लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ FeCl3। अब ठीक है, NCERT बोल रहा है तो मानते हैं, लेकिन ये कोई लॉजिकल रीज़न समझ में नहीं आ रहा कि H2 के लिबरेट होने से FeCl3 का प्रिवेंशन के फॉर्मेशन में क्या फ़र्क पड़ा। एक दूसरा कारण जो हम लोग देख सकते हैं वो है E0 वैल्यूज़, तो E0 फॉर आयरन Fe+2 टू Fe+3 इज़ नेगेटिव एंड Fe+3 टू Fe+2 इज़ पॉजिटिव, मतलब Fe+2 से Fe में बदलना अनस्पॉन्टेनियस है और Fe+3 से Fe+2 में बदलना स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो इसीलिए Fe+2 ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब Fe+2 इज़ मोर स्टेबल देन Fe+3 एंड Fe+2 इज़ मोर स्टेबल देन नॉर्मल आयरन एलिमेंटल आयरन, तो इसीलिए Fe+ कॉन्ग HCl क्या बनाता है, FeCl2 प्लस H2, क्योंकि Fe+2 ज़्यादा स्टेबल है E0 वैल्यूज के हिसाब से। ये ऑप्शन है लिबरेशन ऑफ H2 प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ FeCl3, तो आँख बंद करके टिक मारना है, क्योंकि NCERT ने बोला है, ठीक है। एक और यहाँ पे एग्जांपल है कि जैसे क्रोमियम, क्रोमियम में कॉन्केट सील डालेंगे तो CrCl3 बनता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे Fe वहाँ पे जो ई नॉट वैल्यूज़ है वो +3 को फेवर करती है, जैसे कि आयरन में ई नॉट वैल्यूज़ +2 को फेवर कर रही थी, उसी तरह से क्रोमियम में +3 को फेवर करती है। तो इसीलिए क्रोमियम प्लस कॉन्केट सील CrCl3 +H2 बनता है। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, ऑक्सो एसिड्स इसके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर सारे NCERT में दिए हुए हैं, प्रैक्टिस करना है, वो स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे एक दो बार बनाने से पक्का पक्की याद हो जाएगा कि पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड है HOF, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिक एसिड, और हाइपोफ्लोरस एसिड उसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मत बोलना गलती से भी, HOF क्या है, फ्लोरिक एसिड, फ्लोरिक HOF फ्लोरिक, और हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड। और अपना HF क्या है, तब तुम पूछोगे HF क्या है, HF है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और HOF क्या है, फ्लोरिक एसिड या फिर हाइपोफ्लोरस एसिड। ओके, अदर्स हैव मोस्ट ऑक्सो एसिड स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन और सॉल्ट्स ओनली, मतलब कि फ्लोरीन के अलावा जो बाकी हैं उनका जो ऑक्सो एसिड्स है या तो एक्वस सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट्स में एग्जिस्ट करते हैं, वैसे सॉलिड फॉर्म या ऐसे अलग से एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन काफ़ी सारे एसिड्स का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, सबके स्ट्रक्चर NCERT में, प्रैक्टिस करना है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, द न्यूट्रल कंपाउंड मेड फ्रॉम टू डिफरेंट हैलोजन्स आर कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, द न्यूट्रल कंपाउंड मेड फ्रॉम टू डिफरेंट हैलोजन आर कॉल्ड व्हाट, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। न्यूट्रल कंपाउंड होना ज़रूरी है, न्यूट्रल होना ज़रूरी है। ये जनरली XYN के फॉर्म में होता है, जब X इज़ द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, मतलब जो एक होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम जो होगा, और Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन हैलोजन, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। ओके, यहाँ पे N ऑड नंबर्स ले सकते हैं, 1, 3, 5, 7, N 5 और 7 तभी होगा जब Y फ्लोरीन होगा, मतलब सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही 5 और 7 बन सकता है, और N 7 तो सिर्फ IF7 के लिए ही होगा, मतलब और कोई इंटर हैलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता इसमें फ्लोरीन 7 हो IF7 के अलावा। ठीक है, एक बार एक्साइटेड स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं, तो हैलोजन के ग्राउंड स्टेट में उसके 2p ऑर्बिटल एक खाली रहता है, एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है ऑक्टेट से। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सेंट्रल एटम में जो एक्स है वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट, जबकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है वो हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही होगा, वो हमेशा -1 में ही होगा। ओके, यहाँ पे जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है सबका नाम दिया हुआ है, याद रखने का बात है टोटल 14 इंटर हैलोजन कंपाउंड है, कॉमन क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कितने हैं, 14। ओके, एन इक्वल्स टू 1 सारा बनता है, IF, ICL, IBR, मतलब अपने नीचे वाले को करते जाओ, I के नीचे क्या है, FCLBR, भूमि के नीचे क्या है, CLF, और CL के नीचे क्या है, F। ठीक है, ये N इक्वल्स टू 1 में सारे बनते हैं, N इक्वल्स टू 3 में IF3, ICL3, IBR3 और BACL3, IBR3 I के जस्ट इमीडिएट बाद वाला, BRCL3 BR के जस्ट इमीडिएट बाद वाला नहीं बनता है, स्टेरिक क्राउडिंग के कारण नहीं बनता है, तो ICL3 और BRCL3 डू नॉट एग्जिस्ट, BRF3 exists, CLF3 exists, ओके, N equals to 5 जब लगाएंगे तो IF5, BRF5, CL5 ये तीन exist करता है, बोले 5 से फ्लोरीन के लिए होगा 5 और 7, तो तीनों का बना दो फ्लोरीन के साथ, IF5, BRF5 और CLF5, और N equals to 7 तो सिर्फ एक के लिए IF7, ओके, टोटल मिला के कितने इंटर हैलोजन कंपाउंड है, 14 इंटर हैलोजन कंपाउंड है टोटल मिला के। ICL दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा ICL जो कि रूबी रेड होता है, और बीटा ICL जो कि ब्राउन रेड होता है, ICL दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा ICL रूबी रेड और बीटा ICL ब्राउन रेड। ICL3 जो है वो डाइमराइज कर जाता है I2Cl6 के फॉर्म में, ICL3 डाइमराइज करता है किसमें, I2Cl6 के फॉर्म में, एंड ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड कोवेलेंट, कोई भी इसमें से आपका आयनिक नहीं है, सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मतलब ये जो कंपाउंड जगह ये बना कैसे, ये जनरली डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से ही बनता है, अलग अलग प्रोपोर्शन में अलग अलग हैलोजन को डालेंगे तो अलग ड्रग बनता है, ओके। और एक्शन ऑफ हैलोजन ऑन लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, मतलब तुम कोई छोटा सा हैलोजन बना दो, इंटर हैलोजन कंपाउंड IF बना दो, उसमें फ्लोरीन पास कर दो तो IF3 बन जाएगा, इस टाइप से बन जाता है, ओके। प्रॉपर्टीज, ऑल कोवेलेंट, ऑल आर कोवेलेंट, ऑल आर डायमैग्नेटिक, सारे के सारे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स क्या है, कोवेलेंट है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाते हैं, ओके, कंपाउंड है तो पेयर्ड अप हो ही जाते हैं, तो डायमैग्नेटिक। दे वोलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड्स एट 298 केल्विन एक्सेप्ट CLF, ये NCERT का लाइन है, ठीक है। दे वोलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट CLF, CLF इज अ गैस, तो CLF जो कि गैस है, उसके अलावा बाकी सब वोलेटाइल सॉलिड या लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ओके। इन जनरल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन्स एक्सेप्ट फ्लोरीन, इन जनरल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन्स एक्सेप्ट फ्लोरीन, कोई भी इंटर हैलोजन कंपाउंड होगा तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा अपने कोरिस्पॉन्डिंग हैलोजन से, सिवाय फ्लोरीन के, फ्लोरीन का बॉन्ड काफ़ी वीक होता है, ठीक है। अब ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में क्यों आया, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम क्यों हुआ, क्योंकि उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा है, साइज छोटा होगा नॉर्मल हैलोजन से, और उसमें लोन पेयर ज़्यादा होगा कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये जो डब्बा बनाया हुआ है BR2 और BRCL को कंपेयर करते हुए, डब्बा काफ़ी ज़रूरी है। देखो बॉइलिंग पॉइंट BR2 का कम होता है BRCL से, क्यों, क्योंकि BRCL इस पोलर, जहाँ भी पोलर बॉन्ड होगा उस पोलर बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू अ थिंग विच इज़ नॉन पोलर, BR2 इज़ नॉन पोलर। बॉन्ड लेंथ BR2 का ज़्यादा है BRCL से, क्यों, BR और CL उसके अंदर, CL छोटा होता है ब्रोमीन से, तो बेसिकली BR2 इज़ अ बिगर मॉलिक्यूल, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। रिएक्टिविटी BR2 का कम है BRCL से, क्यों, क्योंकि BRCL में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ BR2 का ज़्यादा है BRCL से, क्यों, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा है BRCL में, तो एक यही सब बात क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी BR2 का ज़्यादा और बॉन्ड लेंथ भी BR2 का ज़्यादा, जनरली ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है, बॉन्ड लेंथ जिसका ज़्यादा ब्रोमीन BR2 का, उसी का बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है यहाँ पे, ओके। ये सॉलिबिलिटी वाला रिएक्शन जो पहले पढ़ चुके हैं, XX′ + H2O गिव्स HX′ + HOX, एक्स की जगह यहाँ पे अपना इंटर हैलोजन कंपाउंड रखते जाओ, जो मन हो इंटर हैलोजन कंपाउंड रखते जाओ। देखो जब XX′ रखेंगे तो हाइपो हैलाइड बनता है, XX′3 रखेंगे तो हैलाइट बनता है, XX′5 रखेंगे तो हैलेट बनता है। यहाँ पे जो HOX है, ठीक है, यहाँ पे इसका अलग अलग फॉर्म बनते जाते हैं, HOX सर्वाइव नहीं बनेगा। XX′ है तो हाइपो हैलाइट, यानी कि हाइपो मतलब ब्रोमीन है तो हाइपरब्रोमाइट, उसके बाद ब्रोमाइट, फिर ब्रोमेट, फिर परब्रोमेट, ओके। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा प्रोडक्ट का भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का यूजेस, देर यूजेस नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, देर यूजेस सॉल्वेंट्स, मतलब नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, यहाँ पे वाटर कम जरूरत नहीं है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। CLF3 एंड BRF3 आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ UF6 ड्यूरिंग द एनरिचमेंट ऑफ 235 यूरेनियम, तो ये पता ही, यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है इसके पहले यूज़ किया जा सके, क्योंकि उसमें बाई नेचर 298 यूरेनियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि नॉन फिजाइल होता है, और 235 यूरेनियम बहुत कम होता है, तो उस 235 को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए उसको एनरिच किया जाता है यूरेनियम को, वो एनरिचमेंट में CLF3 और BRF3 काम आता है। तो यूरेनियम में जब CLF3 डालेंगे, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हट के रिएक्शन है, यूरेनियम में जब CLF3 डालेंगे, CLF3 जो कि लिक्विड है, तो UF6 + 3 CLF बनेगा। प्रोडक्ट पर ध्यान दो, क्या बनता है, UF6 + 3 CLF, CLF भी बनता है, एक और इंटर हैलोजन कंपाउंड प्रोडक्ट में बन रहा है, ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड प्रोडक्ट में भी बन रहा है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम में CLF3 डालेंगे तो UF6 बनेगा, हम लोग को पता है UF6 काफ़ी कॉमन है, UF6 बनेगा और उसके बाद CLF बनेगा, क्या बनेगा, CLF, और फिर दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, ये तो हो ही गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ग्रुप 17 भी ख़त्म होता है, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, कोई भी डाउट्स हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, और आई होप यू एंजॉय द पॉडकास्ट। आगे मैं ग्रुप 18 को भी कवर कर लूँगा। अगर आपने ग्रुप 15 16 नहीं देखा है तो एपिसोड 1 और 2 में देख लें ग्रुप 15 16 को। मैं जैसे जैसे हो सके वीडियो पॉडकास्ट डालते जाऊँगा डी ब्लॉक पे, एफ ब्लॉक पे, एस ब्लॉक पे, जैसे जैसे होगा मैं कवर करता जाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे।